أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم الأولين سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عزیزان محترم، کل شب سن 1422 ہجری کا چاند افق عالم پر نمودار ہوا اور اس چاند کے دیکھتے ہی ہمارے گھروں میں اور ہمارے اعضا خانوں میں فرش مجلس بچھ گیا. یہ مجلس اسلامی معاشرے سے کٹی ہوئی کوئی روایت نہیں ہے. یہ مجلس امن کی دستگاہ ہے، یہ مجلس محبت کی دستگاہ ہے، یہ مجلس تہذیب کا مدرسہ ہے، یہ مجلس ادب کا مدرسہ ہے. ان مجلسوں میں اخلاق محمدی سکھلائے جاتے ہیں اور ان مجلسوں میں کردار آل محمد کو دہرایا جاتا ہے. یہ مجلسیں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے قائم نہیں ہوتی، محبتوں کو اجاگر کرنے کے لیے قائم ہوتی ہیں. ان مجلسوں کی بنیاد محبت ہے، ان مجلسوں کا مرکزی موضوع محبت ہے. اگر ہم یہاں تک آ گئے تو آہستہ آہستہ اس مرحلے فکر سے آگے بڑھ جائے. یہ مجلسیں ذریعہ ہے اسلامی فکر کو دہرانے کا. یہ جو دہرانے کا لفظ آ گیا ہے نا، تو ذرا اس پر سنتے جاؤ. یہ مجلسیں ذریعہ ہے علوم اسلامی کو دہرانے کا. دہرانے کا فلسفہ کیا ہے؟ دہرانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو قرآن مجید کی طرف. پیغمبر اکرم کے جو مقاصد بعثت بیان کیے گئے سورہ جمعہ میں، ان مقاصد میں نے بار بار کی آیتیں پڑھی ہیں، لیکن ذرا استدلال دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا جَاءَ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب میں تینوں آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. سر سری گزر رہا ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. اور یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. اچھا, اب جو یہ رسول بھیج دیا تو اس رسول کا کام کیا ہے؟ جو ہے دہرانے کا فلسفہ. رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے. جو تذکیہ کرے, تلاوت تذکیہ, وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ, اور انسانیت کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. بھائی توجہ رہے, پہلا کام ہے تلاوت, دوسرا کام ہے تذکیہ, تیسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت. جب تک قرآن آتا رہے گا تلاوت ہوتی رہے گی.
رکے رہو.
جب تک قرآن آتا رہے گا میرا نبی تلاوت کرتا رہے گا. جب قرآن کا نزول ختم ہو جائے گا تلاوت کا کام مکمل ہو جائے گا. ہے کسی کو احساس؟ بھائی تو میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں کہ جب تک آیتیں آئیں گی میرا نبی تلاوت کرے گا. جب آیتیں ختم ہو جائیں گی تلاوت کا فریضہ مکمل ہو جائے گا. جب تک لوگوں کے نفس پاک نہیں ہوں گے نبی تزکیہ کرے گا. جب پاک ہو جائیں گے تزکیہ کا فریضہ ختم ہو جائے گا.
دیکھو
آیتیں وہی ہیں لیکن ذرا استدلال تو دیکھتے جاؤ. اچھا, جب تک نبی کتاب کی تعلیم دیتا رہے گا اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا اور لوگ تعلیم لیتے رہیں گے, نبی تعلیم کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا. اور جس دن تعلیم مکمل ہو گئی یہ فریضہ بھی مکمل ہو گیا. بھائی توجہ رہے, بڑے نازک مرحلے پہ آیا. قرآن کا نزول جب تک ہے تلاوت جاری ہے. جب تک تزکیہ نہ ہو تب میرا نبی تزکیہ کرے گا. جب تک پڑھاتا رہے گا فریضہ تعلیم جاری رہے گا. اور جب پڑھا لے گا لوگ پڑھ لیں گے تو فریضہ تعلیم بھی ختم ہو جائے گا. طے ہو گئی نا بات. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی قرآن نے دو مقامات پر عجیب باتیں کہی. بھائی توجہ رہے, اب جب پڑھنے کے بعد توجہ, انسانی فطرت میں دو خامیاں ہیں. ایک خامی ہے اختلاف اور دوسری خامی ہے نسیان, بھول جانا. ایک خامی ہے اختلاف. میں آپ سے اختلاف کروں گا, آپ مجھ سے اختلاف کریں گے, یہ مطلب اس مطلب سے اختلاف کرے گا, فلاں فرقے والے سے اختلاف کرے گا. یہ مزاج ہے. بھائی توجہ رہے, تو اب تعلیم ہو گئی, تزکیہ ہوگا, ہو گیا, اور امت نے آیتیں سن لی, لیکن مزاج میں اختلاف ہے نا. مزاج میں اختلاف ہے. اور یہ اختلاف نہ تعلیم سے بدلے گا, نہ تزکیہ سے بدلے گا, نہ تلاوت سے بدلے گا. تو پروردگار اب اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہر قرآن میں وما انزل اللہ علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمۃ وبشرى للمسلمین. بھائی عجیب ہے, ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو اسے بیان کرے گا, تو اسے کھول کے پیش کرے گا. تو جب تک قرآن باقی ہے اور جب تک ذہنوں میں اختلاف ہے بیان رسول ضروری ہوگا. بہت ہی نا باتیں. رکے رہو, ابھی تو میں تمہیں ان منزلوں سے آشنا کرا رہا ہوں جو منزلیں آگے کی تقریروں میں کام دیں گی. اچھا, تو جب تک ذہنوں میں اختلاف ہے اور فطرت میں انسان کے اختلاف, اس وقت تک بیان رسول کا جاری رہنا ضروری ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو. اچھا, تو دوسرا عیب کیا ہے انسان میں؟ نسیان, بھولتا ہے. بھائی توجہ رہے, خدا کی قسم بہت ہی نازک مرحلہ ہے. انسان بھولتا ہے. بھائی انفرادی حافظہ کمزور نہ ہو لیکن انسان کا اجتماعی حافظہ کمزور ہوتا ہے. انسان بھولتا ہے. توجہ, تو نبی کا پہلا فریضہ تلاوت, دوسرا تزکیہ, تیسرا تعلیم, چوتھا تبلیغ. زمین کے معنی بیان کر دینا, اختلاف کی منزل پر فیصلہ دے دینا. اور اب پانچواں مرحلہ ذکر, فإن الذکر تنفع المؤمنین. حبیب انہیں بار بار بتلاتا رہا ہے, یہ دہرانے کا مطلب ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ذکر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. حبیب قرآن کی آیت ہے, حبیب بار بار دہراتا رہا اس لیے کہ دہرانا مومنوں کے لیے منفعت بخش ہے, مومنوں کے لیے مفید ہے. بھائی توجہ رہے تو کچھ وہ چیزیں ہیں جنہیں پروردگار حکم دیتا ہے کہ انہیں بار بار دہراتے رہو. بھائی توجہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ حافظے میں نسیان ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھائی کربلا کا واقعہ ہو گیا, یہ بار بار دوہرا کیوں رہے ہو؟ اور چونکہ تم بھول رہے ہو اس لیے دوہرا رہے. تم بھول رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب کچھ بات پہنچ رہی ہے تو اب یاد رکھنا میرے جملے کو. میرے نبی کے پانچ فریضے, تلاوت, تزکیہ, تعلیم, تبعین, تذکیر, بار بار یاد دلانا, بار بار یاد دلانا. تو اب تو بات طے ہو گئی نا کہ یہ مجلسیں تذکیر ہیں. اگر نہ بھولے ہوتے تو انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں تھی, ایک مرتبہ کافی تھا. اب میں کیا کروں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی کچھ چیزوں کو دہرائے, اور نبی ان چیزوں کو بار بار دہراتا ہے. اور جاؤ اگر تاریخوں میں نہ ملے تو میری بات سے انکار کر دینا. بچہ پیدا ہوا, سوسائٹی پہلی پیدا ہوئے میرے نبی کی گود میں آئے, اور میرا نبی اس وقت رویا, اس وقت اس نے کربلا کا واقعہ بیان کیا. محرم کی پہلی تاریخ ہے نا. اچھا دیکھو اب مجھ سے دو روایتیں سن جاؤ. ایک وہ روایت, یہ دونوں روایتیں میں نے سن 1409 ہجری میں اور سن 1413 ہجری میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی, لیکن استدلال لے رہا ہوں, اور اس استدلال کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لے رہا ہوں. ہمارے محدثین نے لکھا, دیکھو نبی یاد دلاتا ہے واقعے کو, اور کس شان کے ساتھ یاد دلاتا ہے. لیکن اگر سنت رسول پر یقین ہے تو پھر اس سنت کو اپنے گرہ میں باندھ لینا. بچہ پیدا ہوا, سفید پارچے میں لپیٹ کر رسول کی گود میں بچے کو دیا گیا, ٹھیک ہے نا. بچے کو گود میں رسول نے لیا, اور لینے کے بعد بے اختیار رسول کی نگاہیں بچے کے چہرے پر ٹک گئی, اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی پیدا ہوا ہے. کنیز نے اطلاع دی سیدہ نساء عالمیان کو کہ نواسا گود میں گیا, رسول کے کیا کر رہے ہیں. اور دیکھو وہ ماں جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے. وہ ماں سوچے گی نا کہ کیا میرے باپ کو بچے کے پیدا ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہے. اس کیفیت میں اپنے حجے سے نکل کر باپ کے پاس آئی, اور کہا بابا آپ کو اس بچے کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹی خوشی تو ہوئی, لیکن کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں اس بچے کے متعلق کہ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رک جاؤ, سنت رسول کے پرستاروں رک جاؤ. اب دیکھو دو متضاد کیفیتیں میرے رسول میں ہیں, پیدائش کی خوشی بھی ہے اور کسی وجہ سے رو بھی رہے ہیں. تو اگر ایک وقت میں خوشی اور غم دونوں آ جائے تو سنت رسول یہ ہے کہ خوشی کو چھوڑو, غم کو اپناؤ. میں سمجھو سنت رسول کیا, سنت رسول یہ کہ ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو तो खुशी दब जाती है, गम उभर जाता है। भाई यही तो लाला था, तो मेरे नबी की सुन्नत है कि अगर खुशी और गम दोनों साथ आ जाए तो हटा दो खुशी को, गम को ले लो। तब मैं मुसलमानों से कहना चाहूँ कि कब तक नए साल की खुशियां मनाते रहोगे? अज़रकुमल अल्लाह। ठीक है ना? अब बेटी ने इशारा किया, देखो पहली मजलिस है और हमारे मौसम अज़ा का आगाज हो रहा है, ये हमारी फसल अज़ा की पहली मजलिस है, तो जी चाह के कुछ तुम्हारे सामने मारूजात बयान कर दूं ताकि नौजवान नस्लों तक ये पैगाम पहुंच जाए। कहा बाबा खुशी? ठीक है, आपने कहा कि मुझे खुशी है, लेकिन ये गिरिया क्यों? कहा बेटी न पूछ तो बेहतर है। देखो अभी ये रिवायत बयान कर रहा हूँ अपनी किताबों से, और अभी इसके बाद एक रिवायत बयान करूंगा जिसे आलम इस्लाम ने लिखा है, दोनों रिवायतें तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूँ। कहा बेटी न पूछ तो अच्छा है। कहा बाबा मैं आपकी बेटी हूँ ना? कहा हाँ तुम्हारी बेटी। कहा बाबा आपको मेरे हक की कसम है, मुझे बतला दे कि आप हुसैन के पैदा होने पर गिरिया क्यों कर रहे हैं? एक मतलब कनीज से कहा देखो अगर अली कहीं मिल जाए बोलो अली है। कहा अली सैयदा का बाजू था वो। अली सैयदा का बाजू थामो। अली ने शहजादी का बाजू थामा और कहा बेटी अब सुनेगी कि मैं क्यों रो रहा हूँ? तेरा ये बच्चा जो इस वक्त मेरी गोद में है एक दिन तीन दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। तीन दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। पूछा बाबा बे अय्ये ज़म्बिन, बाबा इस बच्चे की खता क्या होगी? कहा बेला जुर्मिन वाला ज़म्बिन, कोई जुर्म नहीं होगा। तेरे बच्चे से जुर्म हो जाए, कोई जुर्म नहीं होगा, बिना खता और बिना तकसीर कदर किया जाएगा। कहा बाबा ये होगा कब? काफी जमानी खाली अन्नी व अन के व अन अलीशिन व अनिल हसन। बाबा भाई तवज्जो रहे, बाबा ये वाकया कब होगा? कहा बेटी उस वक्त होगा जब मैं नहीं होगा, तू नहीं होगी, अली नहीं होगा, हसन नहीं होगा। बस ये सुनना था कि घबरा गई शहजादी और कहने लगी बाबा जब कोई नहीं होगा तो मैं इस बच्चे पर रोएगा कहाँ? मुहर्रम की पहली तारीख है ना, मुहर्रम की पहली तारीख है। अब मेरा जी चाहता है कि तुम्हें यहीं से फिरा के ले जाओ। बच्चा गोद में आया है। पैगंबर रोए और एक दिन हसन और हुसैन दोनों जान पर बैठे हुए हैं। जाओ देखो ना रिवायतें है या नहीं, और मैं सही हवालों से इन रिवायतों को पेश कर रहा हूँ या नहीं। दाहिने जानू पर हसन है, बाएं जानू पर हुसैन है। पैगंबर अकरम ने बड़े नवासे के लब चूमे, छोटे नवासे का गला चूमा। हुसैन ने अपने होंठ बढ़ाए, नबी ने फिर गले का गोसा दिया। बच्चे को अच्छा नहीं लगा, रोता हुआ माँ के पास आया, अम्मा क्या मेरे घर से कोई बुए बना रहे हैं? अज़रकुमल्लाह, ये दूसरा वाक़या है जिसे मैं तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। रोता हुआ बच्चा आया, अम्मा क्या मेरे दहन से बुए बाजा रही है? कहा नहीं। कहा फिर नाना ने ऐसा क्यों किया कि भैया के होंठ चूम लिए और मेरा गला चूमा? बीवी बच्चों को लेके मस्जिद में आई। पैगंबर उठ के खड़े हुए, देखो मस्जिद में वाक़या हो रहा है, पैगंबर उठ के खड़े हुए, बीवी को बिठाया, अली मौजूद है ना। कहा के बाबा सबब क्या है कि आपने इसके होंठ चूमे, इसका गला चूमा? कहा बेटी तुझे तो बतला चुका हूँ ना कि ये तीन दिन का भूखा प्यासा शहीद होगा, यही तो वो मकाम है जहाँ खंजर चलेगा। यही तो वो मकाम है जहाँ खंजर चलेगा। अब फिर रिवायतों में तकरार है, अब फिर सुनना। घबरा के कहा कि बाबा मेरे बेटे पे कौन रोएगा। कहा बीबी मत घबरा, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके बुजुर्ग इसके बुजुर्गों पे रोएंगे, जिसकी औरतें इसके औरतों पे रोएंगी, जिसके जवान इसके जवानों पे रोएंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों पे रोएंगे। छोटा बच्चा सुन रहा है कि एक कौम पैदा होगी। जब रसूल बयान कर चुके तो बच्चा खड़ा हुआ, कहते का लाला आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे। नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे। कहा बेटे मैं वादा करता हूँ कि जब मस्जिद शिफात पे बैठूंगा तो सबसे पहले तेरे रोने वालों की शिफात करूंगा। बच्चा चला, चल के बाप के सामने खड़ा हो गया। बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे। कहा बेटे मैं साकी कौशल हूँ ना, मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले तेरे रोने वालों को जामे कौशल से शराब करूंगा। आया भाई के पास कि भाई तुम मेरे रोने वालों को क्या दोगे। का सरदारी जवाना ने जन्नत से ना, तो वादा है कि तुम्हारे रोने वालों को जन्नत में जगा दूंगा। नाना से पूछ लिया, बाप से पूछ लिया, भाई से सवाल कर लिया, और बच्चा चला खड़े खड़े सवाल किया ना कि नाना आप क्या देंगे, बाबा आप क्या देंगे, भाई तुम क्या दोगे। अब आया और आकर माँ की गोद में बैठ गया कि अम्मा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगी। बीबी ने चीख मारी, कहा बेटे ये गरीब माँ क्या दे सकती है। दरवाजे जन्नत पर पाल बिखरा के बैठ जाएगी कि जब तक तेरे रोने वाले न चले जाए। अजरकुम अल्लाह मैं सुन रहे हो ना, हमने अपनी फसल अदा का आगाज कर दिया, हमारे मौसम अदा का आगाज हो गया। दो रिवायतें तुमने सुन ली, बड़े इख्तिसार के साथ मैंने रिवायतें पेश की है, बड़े इख्तिसार के साथ दो रिवायतें तुमने सुन ली ना, दो रिवायतें। और अब जाओ देखो आलम इस्लाम की किताबों में है या नहीं। ये तो मैं अपने घर से सुना रहा था, अपने मुहद्दसीन की नकल की भी रिवायतें सुना रहा था। जाओ देखो तिर्मिज़ी शरीफ में है या नहीं, जाओ देखो बड़े बड़े मुहद्दसीन ने लिखी है या नहीं। एक दिन पैगंबर अकरम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आए हुजरे में, और कहा उम्मे सलमा मुझ पर वही नाजिल होने वाली है, मैं हुजरे में लेट रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद करके बाहर बैठ जाओ और खबरदार अब कोई दाखिल हो। देख रहे हो देवा, देख रहे हो पैगंबर के मुझ पर वही इलाही आने वाली है, मैं हुजरे में आराम करूंगा, तुम दरवाजा बंद करके बाहर बैठ जाओ, खबरदार अब कोई दाखिल हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि पैगंबर लेट गए, मैं दरवाजा बंद करके दरवाजे के बाहर बैठ गई। बड़ी देर गुजर गई, इतने में पैगंबर का छोटा नवासा हुसैन आया और उसने दरवाजा खोल के अंदर जाना चाहा, दरवाजा खोल के अंदर जाना चाहा। मैंने रोक दिया, बेटे रुक जाओ, तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, उन पर वही इलाही का नुज़ूल होने वाला है। उन्होंने मना किया है कि कोई हुजरे में दाखिल न हो, उन्होंने मना किया है कि कोई हुजरे में दाखिल न हो। एक मतलब बच्चे ने घूर के देखा नानी को और कहा नानी के हमें भी मना किया है। इस जुमले की कुव्वत समझ रहे, इस एक जुमले की कुव्वत अगर समझ में आ गई पूरी कर्बला समझ में आ जाएगी। नानी क्या हमें भी मना किया है। का बेटे सबको मना किया है। बच्चा ये सुन के पलटा और उधर से रसूल हुजरे से आवाज़ दी, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी बचा लिया। अय्यकुम अल्लाह, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी बचा लिया। कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या करूँगा, क्या वापस बुलाओ। बीबी धोती हुई आई, हजरत उम्मे सलमा धोती हुई आई, कहा चलो बेटे तुम्हें नाना बुला रहे हैं। कहा नहीं अब हम नहीं जाएंगे, नाना ने मना कर दिया था ना। कहा बेटे तकसीर मुझसे हुई, मुझे नहीं मालूम था कि लोग और हैं तू और है। मुझे मुझे नहीं मालूम था कि लोग और है, तू तू और है, ठीक है ना, सुन रहे हो आराम से। हजरत उम्मे सलमा बयान करती है कि बच्चा दाखिल हुआ हुजरे में और पैगंबर के सीने पर लेट गया। मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर हो गई तो मुझे रसूल के रोने की आवाज महसूस हुई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके रोने का सबब क्या है, क्या मैं हुजरे में आ सकती हूँ? कहा उम्मे सलमा आ जाओ, उम्मे सलमा आ जाओ। उम्मे सलमा बयान करती है कि जब मैं हुजरे में दाखिल हुई तो बच्चा पैगंबर के सीने पे सो रहा था। पैगंबर की मुट्ठी बंद थी, तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, पैगंबर की मुट्ठी बंद थी, बच्चा पैगंबर के सीने पे सो रहा था और पैगंबर सिसकियां लेकर रो रहे थे, आवाज बुलंद रो रहे थे। भाई अगर आवाज बुलंद न रोते होते तो उम्मे सलमा दरवाजे के बाहर कैसे सुनती? तो सुन्नते रसूल है मसाइब हुसैन पर चीख कर रोना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, रसूल की सुन्नत है ना हुसैन के मसाइब पर चीख करो ना। अच्छा आई, कहा अल्लाह के रसूल अगर मसलहत हो तो बयान फरमाए कि रोने का सबब क्या है। कहा उम्मे सलमा क्या पूछती हो? फरिश्ता आया और फरिश्ते ने हुसैन को मेरे सीने पर सोते हुए देखा तो फरिश्ता कहने लगा कि या रसूल अल्लाह आपको यह नवासा बहुत अजीज है। कहा बहुत अजीज है, बहुत अजीज है। भाई सुनना, तुम रो चुके ना, रो चुके, और अब जाहिर है कि मैं वाक़े को तमाम करूंगा और जरा सा और आगे बढ़ जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आपको बहुत अजीज है ना ये आपका नवासा? कहा हाँ बहुत अजीज है। कहा ये एक दिन भूखा प्यासा शहीद होगा और या रसूल अल्लाह आपको पसंद है कि मैं उसके मक्तल की मिट्टी आपको हदिया कर दूं? कहा हाँ पसंद है। फरिश्ते ने हाथ बढ़ाया, मक्तल की मिट्टी ली, मेरी मुट्ठी में दे दी। और ये जो मुट्ठी देख रही हो ना, ये जो मुट्ठी देख रही हो, इसमें हुसैन के मक्तल की मिट्टी है। और सुनो उम्मे सलमा, सुनो उम्मे सलमा, फरिश्ते ने जमीन करबला को मेरे सामने पेश किया और मकामात की तायीन की। ये वो जगह है जहाँ हुसैन का बेटा अली अकबर बर्शी खाएगा, ये वो जगह है जहाँ हुसैन का भाई घोड़े से जमीन पे आएगा, ये वो जगह है जहाँ से 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगेगा। मकामात की तायीन की, मनाजिल बतलाई फरिश्ते ने, फरिश्ते ने मनाजिल बतलाई, मकामात की तायीन की और मिट्टी दी। पूरा वाकया रसूल ने उम्मे सलमा से बयान किया और रसूल से किसने बयान किया? फरिश्ते ने। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत पढ़े लिखे शहर के शहरी हो। फरिश्ते ने रसूल को जिक्र हुसैन सुनाया और रसूल ने उम्मे सलमा से जिक्र हुसैन किया, तो जिक्र हुसैन करना भी सुन्नत रसूल है, जिक्र हुसैन सुनना भी सुन्नत रसूल है। बात मेरे सुनने वालों तक, देखो अब दामरे वक्त गुंजाइश नहीं है। वो बच्चा जवान हुआ, रसूल गए दुनिया से, माँ गई, बाप दुनिया से गया, भाई रुखसत हुआ और अब एक दिन वो बच्चा आया पैगंबर अकरम की लहद पर खुदा हाफिज करने के लिए। अच्छा एक जुमला कहना चाह रहा हूं, देखो तुम मेरी गजमज बयानियां सुनने के आदि हो ना। मेरे बुजुर्ग गुलाम नकी रिज़वी साहब खुदा के तुझे उम्र अता फरमाए फरमा रहे थे ये मेरा 28वां साल है इस मिंबर पर, ठीक है ना। तो तुम्हारे शहर में हमने इस मिंबर पे उम्र गुजार दी जिक्र हुसैन में और तुम्हारे शहर में उम्र गुजार दी, एक जुमला सुनते रहो और ये जुमला इस काबिल है कि इसे अपने जहनों में महफूज रखना। देखो आशूर के दिन हुसैन बड़े मुस्तरिफ थे, जब अकबर को भेजा है ना तो दौड़ते हुए जा रहे थे खुद पीछे पीछे, कितने मुस्तरिफ थे। जब अब्बास के शाने उठाए तो बड़े मुस्तरिफ थे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब कमरे रसूल से भेजा हुए जब कमरे रसूल से भेजा हुए तो जो इस्तेरार की कैफियत थी, रावी कहता है पूरी जिंदगी में वो कैफियत मैंने हुसैन को नहीं देखी। आए मैं जुमला याद रखोगे ना, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, मुहर्रम की पहली तारीख है और मुहर्रम की पहली तारीख का सूरज डूबने वाला है, तो ये जुमला अपने जहन में रख लो और ये जुमला तुम्हारे काम आएगा। आए अब रसूल पर 28 रजब की रात को और आने के बाद कब्र के ऊपर लेट गए, वैसे लेटे जैसे उम्मे सलमा के हुजरे में रसूल के सीने में लेटे थे। पहुंच गई बात, पहुंच गई बात। और रोते रोते लोग बयान करते हैं कि गश आ गया, नहीं गश नहीं आया, इतना रोए कि नाना की कब्र के तावीज पर नींद आ गई, क्योंकि सीने पर सोने के आदि थे, तो जब नाना की शफकत महसूस हुई तो नींद आ गई। कहा नाना आपकी उम्मत ने बहुत सताया है, नाना आपका ये नवासा आपसे इजाजत तलब करने आया है, देखो तुमने गिरिया किया और अब इससे ज्यादा मरहले फिक्र नहीं है, इजाजत ली, भाई की खबर पे आए, इजाजत ली, भाई की खबर पर एक मरतबा गए लेकिन नाना की खबर पर बार बार गए। लेकिन एक जुमला मैं कह चुका हूं, लेकिन उस जुमले को अपने जहन में महफूज कर लो कि जब जा रहे थे ना नाना की कब्र पर तो थम थम के चल रहे थे, आदम जम जम के उठा रहे थे, जब भाई की कब्र पर गए हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कायनात का कोई शहजादा जा रहा हो, और जब रुखसत होने के बाद माँ की कब्र मुतहर की तरफ से तो वैसे दौड़े जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, अस्सलाम वालेकुम उम्मा। अजरकुम अल्लाह। देखो तुमने बहुत क्रिया किया और पहली मुहर्रम का हक था कि हम अपने आंसुओं के नजराने पेश करें, लेकिन इसी मकाम से मुझे आगे बढ़ जाना है और 5 दकीके लेने हैं मौजूद गुफ्तगू से मुतालिक। रुखसत हुए, काफिला तैयार हुआ, खुदा के प्यारी अपने पूरे काफिले के साथ चले। अब तुमसे एक सवाल करना चाह रहा हूं भाई, अगर शहीद ही होना था, अगर हुसैन को शहीद ही होना था तो मदीने में हो जाते। अच्छा भाई मदीने से चले थे मक्के में शहीद हो जाते, भाई मक्के में शहीद नहीं होना था तो बाप के दारुल हुकूमत कूफे चले जाते, लेकिन नहीं, हुसैन ने जंगलों को तय किया, बयाबानों को तय किया, गोहदश को तय किया और एक ऐसे रेगिस्तान को मुंतखब किया जहां हुसैन ये चाहते थे कि इंसानियत का उलूही मंशूर अपने खून से लिख दो। इंसानियत का उलूही मंशूर अपने खून से लिख दू, मेरे बाप का कातिल छुप गया, मेरे भाई का कातिल छुप गया, अब ऐसे मैदान में लड़ूंगा कि कयामत तक मेरा कातिल छुप नहीं सकेगा। इंसानियत का उलूही मंशूर लिखने के लिए अपने खून से, अजहर के खून से, अली अकबर के खून से, अबुल फजल अब्बास के खून मुतहर से मंशूर लिखने के लिए हुसैन करबला के मैदान में आए। देखो अब मैं आया हूं अपने मौजू पर, इंसानियत का उलूही मंशूर, इंसानियत का उलूही मंशूर वजाहत होगी कि यह क्या है। मैंने इस उनवान के लिए उन्हीं आयात का इंतखाब किया जिन आयात को गुज़श्ता साल तुम्हारे सामने पेश कर चुका हूं, सूरह वल्लैल की इब्तदाई 10 आयतें। देखो कुरान मजीद में इतनी गहराई और इतनी गहराई है कि पूरी जिंदगी अगर एक आयत पे गुजर जाए तो उस आयत का हक अदा नहीं होगा। तो मैंने ये चाहा कि इस उन्वान के तहत इन आयात के वो मबाहिस जो रह गए थे गुज़श्ता साल उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैल इज़ा यख्शा, कसम है रात की जब अंधेरी हो जाए, वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की जब वो मुकम्मल तरीके से रोशन हो जाए, वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, कसम है उन सारी चीजों की जिन्हें अल्लाह ने नर और मादा पैदा किया, रात की कसम, दिन की कसम, नर की कसम, मादा की कसम, इन सय्यकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें बड़ी मुंतशिर हैं, बड़ी परागंदा है, बहुत मुख्तलिफ कोशिशों वाले लोग हो, देखो इंसानियत पर कमेंट कर रहा है अल्लाह, अम्मा कोई कोशिश मुंतशिर है, कोई दिन जैसा है, कोई रात जैसा, कोई घर जैसा है, कोई माता जैसा, फम्मा मन आता वत्तका, तो वो जो अता करे, जो सखावत से काम ले, वत्तका तकवा इख्तियार करे, अता तकवा दो चीजें हो गई, वह सत्तका फिर हुसना और हर अच्छी बात की तस्दीक करे। तो जो अता करेगा तकवा इख्तियार करेगा, अच्छी बात की तस्दीक करेगा, फसा नुयस्सिरहु लिलयुसरा, हम वादा करते हैं कि उसे बेहतरीन जगह तक पहुंचा देंगे। वह अम्मा मन बखेला वस्तगना, और वो जो बुखल करे, जो अपने आप को मुस्तगनी समझे, वह कसबा बिल हुसना और अच्छी बातों की तस्दीक करे, फसा नुयस्सिरहु लिलयुसरा, हम कहते हैं कि उसे बदतरीन जगह तक पहुंचा के दम लेंगे। सुन लिया तुमने, आगाज है सूर्य का, सूर्य का आगाज है रात की कसम, सूर्य का आगाज है दिन की कसम, ये दिन और रात तुम्हारी जमीन की गर्दिश का नतीजा है। अब देखो मेरे पास दामन वक्त में गुजारिश नहीं है, मेरे पास 7 या 8 दकीके रह गए हैं अजान मगरिब की आवाज बुलंद होने में, और मैं उसी में बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। तुमने गिरजा किया, बात मुकम्मल हो गई, लेकिन यहां तक आ गए हो ना, तो अल्लाह इंट्रोडक्शन देखते जाओ, रात की कसम, दिन की कसम, ये जो पूरी कायनात है ना, ये करिश्मा है दिन का और रात का, जमीन घूमती है उससे दिन बनता है, जमीन मजीद घूम जाती है उससे रात बनती है, तो सूरज और जमीन के बाहमी इर्तिबात से दिन और रात पैदा हुए, और दिन और रात के तसलसल ने जमाना बनाया। समझ गए, जमाना समझ में आ गया, जमाने पर सूर्य वल आसर के साहब में पूरी तफसील गुफ्तगू कर चुका हूं, वहां नहीं ले जाऊंगा। यानी जब जमीन घूमेगी दिन आएगा, फिर घूमेगी रात आएगी, फिर घूमेगी दिन आएगा, तो दिन और रात का तसलसल जमाना बनाता है। भाई बहुत तवज्जो रहे, अब जमाना इतना हावी है हमारे ऊपर कि हम कहते हैं कि भाई हम क्या करें, जमाना ऐसा आ गया है, अब तो करना है जैसा जमाना कर रहा है, जैसा जमाना कर रहा है वैसा हमें करना है। तो तुम हाकिम नहीं हो जमाने के, जमाना हाकिम है तुम्हारे ऊपर। भाई रुके रहना, पैदा हुए, लड़के हुए, नौजवान हुए, जवान हुए, अंधेड़ हुए, बूढ़े हुए, मर गए, जमाने ने पैदा किया, जमाने ने मार दिया। तो जब तक जमाने की हाकिमियत कबूल करोगे, भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को, कि तुम घिरे हुए हो जमान में, तुम महकूम हो जमान के, जमान तुम्हारे ऊपर हाकिम है, पैदा होते हो मर जाते हो तो मरने का सबब ही जमाना है। अब वो जो साहिब उस जमान हो उसे मौत नहीं आ सकती। बस 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 मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ले आए ना, देखो जमान, अगर जमान कंट्रोल में आ जाए तो फिर मौत का क्या सवाल है। भाई अब मैं समझा दूं बात को, और बात को समझा के गुफ्तगू को इस मकाम पर रोक दूं। भूल गए वो जब कायनात का सबसे बड़ा इंसान था, जमाना कैसा कंट्रोल में था। तो एक छोटी सी मिसाल पहले से तुम्हारे जहनों में मौजूद है, गया मेराज की रात में, गया पूरी कायनात को देख के आया, जंजीरें हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वुजू का पानी बह रहा था तो बह रहा था, यानी जमाना इतने कंट्रोल में कि लाखों साल का सफर कर लिया और जमीन पर एक लम्हा था। पहुंच रही है बात, ये तुम हो और वो जमाने का मालिक है। मैं यही तो समझाना था, मैं तुम्हें अगर आदर की नमाज पढ़नी है, देखो अब तो बस चला गया ना, अब मगरिब में 3-4 दकीके रह गए, तुम्हें अगर असर की नमाज इस वक्त पढ़नी है तो छोड़ दो मजलिस को, जाके नमाज पढ़ो, इसे कि आप सूरज पलटेगा नहीं, लेकिन जिसके कब्जे में सूरज हो वो पलटा के नमाज पढ़ेगा। बस بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو کو آج اس مرحلے پر روک رہا ہوں. سخنہائے گفتنی بہت ہے، لیکن آج بات کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اذان مغرب کی آواز بلند ہونے میں کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں. تم گریا کر چکے اور اب تمہیں زیادہ زحمت سے سماعت بھی دوں گا. سمجھ میں آئے؟ کچھ وہ جو زمانے کے محکوم، کچھ وہ جو زمانے کے حاکم. اب کچھ بات واضح ہو رہی ہے بھائی. ہم ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں کہ اگر مر جائے تو ان کا ذکر بھی مر جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تقریر ختم کی اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت آج نہیں دوں گا. آج بھی ذکر تازہ ہے. میرے باپ کو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے. بر صغیر کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن آج جب میں نام لے رہا ہوں میرے دل میں کوئی گداز نہیں ہے. جس دن انتقال ہوا تھا میں رو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ہوں گے باپ، ہوں گے دادا، لیکن حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عجیب نام ہے لفظ حسین کہ سن کر کان تھکتے رہے اور رو کر آگے نہیں تھکتے. بس آخری جملہ سنو، جب دوڑتا ہوا ماں کے کمرے میں ٹہر پہ آیا اور سلام علیکم اما. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب روتا ہوا آیا ہے نا، دوڑتا ہوا، السلام علیکم اما، اما تیرے اوپر میرا آخری سلام ہو. اب میں جا رہا ہوں تیرے شہر کو چھوڑ کر. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، آخری جملہ، قبر مطہر پہ گرے اور پھر کہا السلام علیکم اما. اما تجھ کو حسین کا سلام پہنچے. قبر سے 3 آوازیں آئی، وعلیکم السلام یا غریب الام، وعلیکم السلام یا مظلوم الام، وعلیکم السلام یا اچھا الام. اے میری ماں کے مظلوم بیٹے، اے میری ماں کے پیاسے بیٹے، اے میری ماں کے مسافر بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام پہنچے. بس یہ سننا تھا کہ ایک بتا حسین اٹھے رزن میں قضائی بتا تسلیم الامرے. اما اب تجھ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اب ملاقات ہوگی تو عاشور کی شب میں ملاقات ہوگی. بھائی یہی سبب ہے کہ جب ماں کھڑی تھی تو حسین دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اما میں آ گیا، اما میں آ گیا، اما میرا سر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.